Tales from a Time Gone By, Flashback with Sheetal Iyer, only on The Podcaster.
It's not in every show that we're going to get to actually begin with the name of the person we're about to explore, Ravi. And we've started you off on that note. Welcome to Flashback. This is Sheetal and with me is Rakesh. Rakesh, tell us all about that song. Where did you find it? What is it about? And how this cheesy moment to begin Flashback?
Why not? I wish there were always songs to introduce the guests we have on. Imagine if there was a song called Husnalal Bhagat. But this particular song was from a Kannada film that I loved growing up. It was called Hosa Belaku. It had Dr. Rajkumar in it, and his character's name in the film is Ravi. Sarita, who plays the actress, sings this song. The song is called Ravi Neenu Agasadinda Mariyagi Hogadinillu, if anyone is interested. But the name is a very crucial aspect of who we are talking about, who is, of course, Ravi. But the problem has been, there have been way too many Ravis.
In fact, there was one on the previous episode as well, B. Ravi Shankar. But yes, let's listen to what Ravi himself had to say about why he came to be called Ravi when actually his name was Ravi Shankar Sharma. Listen to this.
मेरा नाम पूरा नाम है रवि शंकर शर्मा.
हाँ जी.
तो लोगों ने मुझे कहा जब मैं असिस्टेंट बना फिल्म हेमंत कुमार साहब का.
हाँ.
तो मुझे लोग कहने भाई बहुत लंबा नाम है ये स्क्रीन पर छापने में मतलब लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है.
हाँ.
तो मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ शर्मा निकाल देता हूँ. हाँ. रविशंकर रखता हूँ. तो मैंने रविशंकर रख लिया.
अच्छा.
अभी रविशंकर रख लिया तो मुझे मैसेज आया, रविशंकर सितार वादक जो हैं.
हाँ.
उनका मैसेज आया कि लोग मुझे पूछते हैं आप हेमंत कुमार के असिस्टेंट हैं. तो मैंने कहा ये तो बड़ी खराब बात है, बोले या तो आप चेंज करो या मैं करूँ. मैंने कहा मैं ही चेंज करूँ, तो मैं फिर शंकर भी हटा दिया.
हाँ.
और रवि लिख लिया. फिर उसके बाद में रवि के नाम से पॉपुलर हुआ. हालांकि मैं गुजराती भी कर चुका हूँ, पंजाबी भी कर चुका हूँ, भोजपुरी भी मैंने की है. तो मैंने कहा चलो मैं मलयालम में अच्छा ओके मैं करूंगा. काफी गाने मेरे पॉपुलर हुए हैं.
हाँ.
मेरे नाम का शायद कोई और आदमी होगा वहाँ केरला में, तो मुझे हमेशा बॉम्बे रवि पुकारते.
अच्छा.
रवि भी नहीं बोलते, रेवी बोलते हैं.
There is also a lot of connections, as we just realized when we started discussing the idea of having Ravi as the topic on this particular episode. From the first episode, we had, of course, Bappi Lahiri. The second, of course, we had Ravi with Ravi Shankar, our guest, as the connection. And there's also the Kalyanji Anandji connection. Sheetal, you spoke about how Kalyanji played the claviolin on Nagin.
Yes, absolutely. So Kalyanji, as a musician, independent musician, worked or collaborated with Hemant Kumar to play the bean part of that particular song on of course, a claviolin. I had to make that correction over there because I think on that episode, I referred to them as assistants to Hemant Kumar, which I have been corrected by Dhiren Shah, who is Anandji's son himself. And he wrote back to say that, well, his father and uncle were actually musicians playing with Hemant Kumar. So that said, yes, there is a connection over there because Ravi was actually an assistant music director to Hemant Kumar. And that's how he was part of the creation of the music of Nagin. And that brings us to the connection, the interesting thread that seems to tie all of these episodes, episodes 1, 2, and this one, 3.
Yeah, episode 1 is, of course, Bappi. And we devoted a significant chunk of airtime on that, figuring out where his inspirations came from. And this, to me, is clearly a new one. Because we focused on a lot of songs from the West, but from the East too, he took inspiration from Bengal specifically. We all know of the song Meghde Panide. We might know it from Guide as the S.D. Barman song, but originally, of course, it's Kazi Nazrul's poem, which has traditionally been sung by many different performers from that region. That is, of course, Meghde Panide. Meghde Panide proved to be the inspiration for a song from Nagin, for which Kalyanji played the claviolin and Ravi was the assistant music director. And that clip is going to be followed by a song from Sharabi, De De Pyar Me, which you may not have thought was a rip-off from some other tune. And yet it is. So it is a collection of 4 of these Meghde Panide inspired tunes that also happen to tie the 3 of our episodes together.
Yeah, and before that clip really comes up, Rakesh, I realized that Ravi, throughout that 2-hour interview that we have from the archives, has sung extensively. In fact, there isn't a 15-minute chunk of audio where he hasn't broken out into song at least, you know, two or three times, either to demonstrate his approach to composing tunes or to talk about a favorite, perhaps. And some of these songs are not necessarily his own compositions. Like he mentioned Chitalkar Ramchandra as one of his favorite composers, and he particularly admired Dheere Se Aa Jaaye. There were tunes that he had intended for different songs altogether. So basically, it was like a lecture demonstration from Ravi himself in his own voice, singing his own composition. So why don't we do that, right? Why don't we try and match, you know, his version of the song as he, you know, sang it for us in the interview with the real song, wherever it happens. How about that? So let's begin with an example of that having happened in the interview in this very clip.
Allah megh de pani de nare de tui, Allah megh de.
Allah megh de pani de chaya de re to rama megh de. Hari chhod de sajaniya, chhod de patang meri chhod de.
Kaise chhodna balamua, nenuwa ki door pehle jod de.
De pyar de pyar de pyar de de hame pyar de
ala megh de pani de chhaya de re tui ala megh de ala megh de.
A thread of continuity on Flashback, and of course it all leads us on this particular episode to music director Ravi. And while Rakesh and I were reading up, we were hard-pressed to find something that we wanted to start the show with, but now that done, let us focus on the second idea that we had, which kind of stood out. You know, if you think of some really massive Mohammed Rafi hits, you will realize that quite a number of them were actually composed by music director Ravi. So Rakesh, should we, you know, play a few samples?
Let's play a few samples and have the audience figure out which these massive hits of Rafi's were, which they might have thought were maybe S.D. Barman's or Madan Mohan's or Kalyanji Anandji's or whoever. But turns out, they're all from Ravi. So this is Rafi for Ravi.
Rafi, Ravi, ye do funkar, ek gayak, ek mausikar. Ek gayak, ek mausikar, amar rahenge inke nagme jab tak hai sara sansar. Chaudhvi ka chand ho, आफताब हो. अरे बाबा, बोलो जो भी हो तुम, खुदा के ला जवाब.
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में.
छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये.
छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये.
आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार.
रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, रहा गए देशों में हर दम. न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे.
बार बार देखो हजार बार देखो,
बार बार देखो हजार बार देखो, के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाली हो.
Now, while some of these songs feature on some of the greatest songs by Rafi of all time, Ravi would probably have rather that he sang the songs himself, because being a music director to even these great songs was simply not his plan A. His plan A was to be a singer.
And that is really what brought him to Bombay. He, of course, had another job while he was in Delhi. He was part of the Post and Telegraph department back in the day, and this clearly was not something that his heart really sang to.
So, but the singing was the first bug that bit him. He had been singing as a child in a bhajan mandali that was quite close to him. In fact, he goes on to say in another interview that the first ever song that he sang on stage was a bhajan from a film called Pukar, which had Sohrab Modi in it. This is Tum Bin Hamara. Listen to a little bit of the original. Sheila is singing this one. the singing bug had bitten him quite hard, and where else to explore the facets of this infection but in the city of dreams. So off to Bombay he came.
And in Bombay, it wasn't quite as simple, because while he did want to pursue a singing career, what he managed to land, of course, were chorus singing parts. And we all mm-hmm. know of the Vande Mataram song in Anand Math. Hemant Kumar was a music director. And the chorus bits is where Ravi got a chance to explore his vocals. But as he himself pointed out, there were a lot of very, very talented singers. And he somehow realized that singing here is not going to be quite as easy.
Vande
He was also a natural tune maker. He says from his very early age, he just casually always composed tunes, but he never thought of himself as a composer. And he never really did get any classical training either. We asked specifically about this, about how whether being trained in classical music is one way to get into the film industry and whether or not it was an essential trait one must have to be in the film industry. This is what he had to say, interestingly.
नहीं ऐसा कुछ नहीं आप देखिए ना यहाँ जितने सिंगर यहाँ हैं आजकल
हाँ जी
कोई क्लासिकल सिवाय मन्ना डे साहब थे रफी साहब अच्छे सिंगर थे बाकी सब क्लासिकल में तो है नहीं अभी देखिए जो कोई मुकेश साहब थे वो क्लासिकल नहीं जानते थे
हाँ.
किशोर साहब थे वो भी क्लासिकल नहीं जानते थे
हाँ.
अभी जितने सिंगर आजकल के हैं ये भी मेरे ख्याल में क्लासिकल में ज्यादा इनका वो नहीं है
अच्छा।
लेकिन क्योंकि सीधे साधे गाने होते हैं कोई भी गाना हो अभी इसमें कोई क्लासिकल गाने की काबिलियत की जरूरत नहीं है
हाँ।
जैसे अभी मैं गाना आपको बताऊं पापा कहते हैं मेरा नाम करेगा अब इसमें कोई क्लासिकल गाने की गायकी की जरूरत नहीं है अब इसमें तो ये है कि कोई भी मेरे शायद मैं अपने सर्वेंट को भी मारपीट के गवा सकता हूँ तो इसे सीधे गाने आजकल बनने लगे हैं लेकिन हमारे जमाने में हम जब बनाते थे तो जैसे रहा गर्दिशों में हरदम मेरे से सितारा कुछ टचेस होते थे क्लासिकल
अच्छा।
इसलिए वो रफी साहब बड़ा अच्छा गाते थे और ये तो आपने देखा होगा सुना होगा कि एक क्लासिकल गाना था जो किशोर कुमार साहब के ऊपर प्रचारित किया था और प्लेबैक बाय मोहम्मद रफी
मन मोरा बावरा
हाँ देखिए तो वो ये जो क्योंकि क्लासिकल में नहीं थे ये लोग गाने का सेंस होना सबसे बड़ी बात है स्वर होना चाहिए
हाँ।
अच्छा स्वर सुर में आवाज हो ताल में आवाज हो
हाँ।
और गायक प्लेबैक सिंगर के लिए पिकअप अच्छा होना चाहिए पिकअप का मतलब अगर मैं किसी सिंगर को सिखाऊं
हाँ।
तो वो इमीडिएटली उसको पिकअप करे तब तो वो सिंगर ठीक है
हाँ।
अगर उसको मैं 15 दिन तक मार पीट के भी वो ठीक नहीं हुआ
हाँ।
तो वो सिंगर सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि अभी आजकल हम देखते हैं सारे गामा ये क्या क्या वो आते हैं तो इसमें कई लोग मुझे बोलते हैं भाई बड़े अच्छे सिंगर आजकल आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ मुझे हंसी भी आती है मैं कहता हूँ कि जो गाने इन्होंने 5000 दफा सुने हैं और 2000 दफा गाए हैं वो तो ठीक ही गाएंगे लेकिन जो हम गाना बताएं उनको नया
हाँ।
वो ठीक गाए तब इनकी काबिलियत है
सो There he was here in Bombay, 1950, 24th of April, I think is when he left it. There was a documentary about Ravi and in it was shown a little entry from a diary in which his mother had so sweetly written, 24 April 1950 ko Ravi Bombay gaya. It was the sweetest thing. And here he lands as a singer. He wants to be a singer, but ends up being a chorus singer. And after that, goes on to establish an identity, setting up orchestras, which reminds us of something, doesn't it? ऐसे होता है सिंगर सिंगर नहीं बन सका सी से कोरस कोरस बन पाया पर उसमें दिल नहीं था और उसके बाद चुना ऑर्केस्ट्रा Disco dancer is the other connection from the first episode. SCO is what Ravi managed to do. But of course, Hemant Kumar, that he started singing for, and then went on to be his assistant music director for several films, including films like Durgesh Nandini, Champakali. And there is another story about the very famous Bean tune from Nagin, whose compositional origins are still a bit of a mystery.
Yeah, because on the previous episode, I remember, you know, referencing a blogger who had zeroed in on a Goa-based pianist as the actual originator of the Bean tune, which was then, you know, incorporated into the soundtrack. And then, you know, Kalyanji was called in. But here, Ravi has something entirely different to say. Listen to him.
The special thing was that Nagin ki jo Bean thi, ye काफी कंट्रोवर्सी लोगों में है कि कल्याण जी उनके असिस्टेंट थे हेमंत कुमार के उन्होंने बनाई है उन्होंने बजाई है वो सारी बातें गलत हैं इनका हेमंत कुमार साहब का असिस्टेंट मैं था और मेरे अलावा कोई नहीं काम करता था मैं ही सारा काम देखता था उनका और मैंने ही वो फिल्म जो थी अपना बीन नागिन की बीन वो हारमोनियम पे निकाली और हारमोनियम पे बजाई। मेन इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम था। अब ये फिल्म में हारमोनियम ना लगे ये इसकी वजह से मैंने एक साज क्लेविन करके था वो कल्याण जी बजाया करता था।
अच्छा।
तो मैं उनको एज ए म्यूजिशियन एंगेज करके।
अच्छा।
तो म्यूजिशियन ही थी वो, क्लेविन सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि ये बीन का टोन चेंज हो, मतलब हारमोनियम का टोन चेंज हो जाए, तो वो मैंने वो उसे भजवाई। और ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है फिल्मिस्तान का, जो फिल्मिस्तान ने रिकॉर्ड निकाला उनको फिल्मिस्तान वालों को बहुत पसंद थी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो थे माटी कुल के, वो बोले इसका अलग रिकॉर्ड बनाते हैं। उसमें पहला नाम मेरा है, बीन म्यूजिक प्लेड बाई रविशंकर कल्याण।
So yes, we spoke about him assisting Hemant Kumar, but when did the independent, you know, branching out really happen? Well, turns out it wasn't something of his plan, as he will share in a clip that will come up shortly. He was quite comfortable. You know, he had managed to make quite a bit of money assisting Hemant and working with different studios and production houses at that time, earning, you know, upwards of 2,000 rupees back in the day, which might have been a handsome sum. But then Hemant Kumar came to him one fine day and told him something that sort of, I would imagine, gave us Ravi as music director.
मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो आदमी मेरी लाइफ में ऐसे आए जिनकी वजह से आज मैं कुछ हूँ, जो भी हूँ। एक तो थे हेमंत कुमार साहब और एक थे देवेंद्र गोयल साहब।
अच्छा।
हेमंत कुमार साहब ने मुझे असिस्टेंट बनाया, असिस्टेंट बनाने के बाद में गोयल साहब ने मुझे इंडिपेंडेंट म्यूजिक का चांस दिया फिल्म बच्चन में। अभी मैं हेमंत कुमार साहब की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मैं उनके साथ काफी फिल्में करता था, 11 फिल्में उस वक्त थी जब मैं उनके साथ काम कर रहा था। एक वक्त 11 फिल्मों में से मुझे हर जगह से 200 रुपए महीना तनख्वाह मिलती थी एज एन असिस्टेंट उनके प्रोडक्शन हाउस से। मतलब मेरी आमदनी उन दिनों 2200 रुपए महीना 2200 पर मंथ थी। एक दिन क्या हुआ कि अच्छा फिल्मिस्तान से भी मुझे 250 रुपए मिलते थे।
हाँ।
तो मेरी आमदनी काफी अच्छी होने लगी थी उस जमाने के हिसाब से और मैं बड़ा खुश था। मैंने अपने एक जो गोडाउन जिसमें रहता था उसके बराबर वाला गोडाउन भी ले लिया।
हाँ।
किराए पर वहाँ मैं रहने लगा, मतलब दोनों गोडाउन में रहता था। और करते करते क्या हुआ, एक दिन हेमंत दा मुझे कहने लगे कि रवि मैं जा रहा हूँ कश्मीर फैमिली के साथ, वहाँ से वापिस आऊँगा, तुम अलग काम करो।
हाँ।
तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने कहा दादा अलग मतलब? बोले नहीं तुम मेरी असिस्टेंट छोड़ दो।
हाँ।
और अलग काम करो।
अच्छा।
मैंने बहुत काम, मैंने कहा दादा क्योंकि मुझे तो एकदम खतरा हो गया कि मेरा ये जो 2200 रुपए महीना मुझे मिलता है।
हाँ।
ये तो गायब हो जाएगा एकदम, एक शॉट में चला जाएगा। तो मैंने कहा मैं बड़ा परेशान, मैं बड़ा दुखी हो रहा था उस वक्त। मैं कह नहीं था रिक्वेस्ट की मैंने दादा, मैंने कहा नहीं दे मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे बोले नहीं आए। अब उन्होंने एक जुमला जो कहा वो मुझे आज तक याद है। मुझे कहने लगे रवि मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा है, तुम बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे, तुम मेरे साथ छोड़ दो वरना असिस्टेंट ही रह जाओगे।
कितने लोग ऐसे बात कहेंगे?
कोई नहीं कहेगा।
हाँ।
कोई नहीं कहेगा। तो मुझे आज भी उनका वो डायलॉग याद आता है।
हाँ।
तो उन्होंने जब मुझे ये कहा मैं भी चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है जैसा ये कहना है। तो मैं घर आया, घर मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा भाई आज हमारा सब कुछ खत्म हो गया, फिर दोबारा नए सिरे से हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो वो भी कहने की कोई बात नहीं, भगवान जैसा जो भगवान की मर्जी। अब मैंने दूसरे दिन मैं उठा, मैं वहां से वापस आया जब शहर से, तो मैं फिल्मिस्तान में कांडिवली रहता था।
हाँ।
फिल्मिस्तान स्टूडियो के आगे से गया और मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं कहते यहाँ भी मैं मेरी एंट्री बंद हो गई, 250 रुपए महीना मिलता था वो भी खत्म हो गया, अब मुझे अलग काम ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन मैं निकला घर से, जहाँ जहाँ मुझे जिस कंपनी से पैसे लेने थे उन सब कंपनियों में एक एक चक्कर मारा मैंने। पहला चक्कर मैंने मारा पुष्प पिक्चर्स में।
अच्छा।
हाँ हेमंत दा ने फिल्में की थी एक दो, उसका मुझे कुछ पैसा वैसा लेना था, सैलरी जैसे लेता हूँ हर महीने। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ के मालिक थे करीम भाई नडियाड वाला।
हाँ।
वो मुझे कहने लगे क्या बात है आज बड़ा चेहरा उदास है। तो मैंने कहा करीम भाई अब नए सिरे से स्ट्रगल शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हेमंत कुमार साहब ने कहा है कि तुम अलग काम करो। तो उन्होंने बड़ा इनकरेजिंग जवाब दिया, कहने लगे चिंता की क्या बात है, अभी एक मिनट ठहर के मुझे एक आवाज दी मेहता जी। मेहता जी की आवाज थी कि बोले रवि साहब का 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। वो 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट पुष्पा पिक्चर्स में फौरन बन गया।
अच्छा।
अब मुझे बोले ये पैसे लो और एडवांस और चिंता नहीं करो किसी बात, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरा काम देखते थे जब मैं काम करता था साथ में हेमंत दा के।
हाँ।
तो मेरा काम देखते थे वो कि इतना मेहनत से काम करता है। तो उन्होंने मुझे 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही मैं नारंग फिल्म में गया, वहाँ भी यही हुआ, वहाँ 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अभी समझिए कि पुष्पा पिक्चर में मेहंदी, घर संसार, नई माँ, पता नहीं क्या क्या पिक्चरें मैंने काफी पिक्चरें की।
हाँ।
नारंग फिल्म में दिल्ली का ठग, बॉम्बे का चोर, मॉडर्न गर्ल, पता नहीं काफी पिक्चरें मैंने उनकी की।
अच्छा।
अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम हो गया। जो मेहंदी फिल्म मैंने की,
हाँ।
वो भी बड़ी चली, घर संसार बहुत चली।
हाँ।
इधर दिल्ली का ठग बहुत गाने पॉपुलर हुए, तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता मैं, इसीलिए मैं अब इसी बीच में गोयल साहब से मुलाकात हो गई थी। गोयल साहब ने मुझे मेरे गाने सुने, चंदा मामा दूर का एक पैसा दे दे, बोले बहुत अच्छे गाने हैं, हम तुम्हें चांस देते हैं म्यूजिक डायरेक्शन का। तो उन्होंने मुझे वचन फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया।
इशारों से लूटे, अदाओं से मारे, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने।
So I suppose Ravi was one of those rare success stories. They came to the city to do something, but managed to do something else and still managed to find success. He would that way join the ranks of some of the more well-known names in Bollywood these days. Arijit Singh, for example, Neha Kakkar, Monali Thakur, none of them won the thing that they wanted to win, which was all these music competitions that they signed up for, but eventually somehow landed on their feet. And Ravi did exactly that, because when he came to Bombay, he didn't have two dimes to shake in his pocket. He slept in railway stations, slept on footpaths and all the rest of it, you know, the classic rags to riches tales, where he really didn't have much, and then figured out, if my plan A was not going to work, I will figure out plan B and plan C. And through sheer hard work and clearly talent, that's where he ended up being.
And well, speaking of talent, right, Rakesh, maybe a time to really shine the light on some of those songs that we consider today as anthem songs. For example, Happy Birthday. If you want to say that via a Hindi film song, there are very few songs that really come to mind. There's one in Farz, of course, but then there is this one.
हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती Happy Birthday to you.
हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
And it's not just the happy birthday song. When it comes to children's songs, there was a rash of songs that Ravi came up with, which remain iconic to this day. Just listen to this montage of children's songs.
बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे।
बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, किम किम करते तारे, ये कहते हैं सारे, सो जाते हैं सपनों में नींदे या पुकारे, किम किम करते तारे,
ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते।
चंदा मामा दूर की, हुए पकाए भूर की।
And then, of course, we need to focus on that really famous song in Mumbai local trains. At least, I mean, not anymore, I'm sure, because after Pardesi came, Pardesi, Pardesi, Jana Nahi, you remember that one, right, Rakesh?
Of course, Raja Hindustani.
Prior to those days, there was this one that everyone associated with seeking alms. I don't know what a polite way of referring to begging is, but this would be it, I suppose.
वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे, वो दस लाख देगा।
So this particular song had lyrics by Ravi. So he was in fact a triple threat. He was a singer, clearly a composer, as well as lyricist, a feature that a lot of us did not really know about. So another song that comes to mind when we speak of Ravi's lyrics is from this famous children's song, little bit of which we played earlier, Chanda Mama Durke. And now, Chanda Mama Durke, of course, has gone on to be morphed into one of the most iconic opening bars of any song.
Thank you.
In fact, he went on to write lyrics and compose music for a non-film album that his mentor, Hemant Kumar, had gone on to record. Here is a snatch of a song from that he composed. This is Zamana Kya Kahega, a private ghazal with music and lyrics by Ravi.
Zamana kya kahega tum agar hum to bula doge hamare pyar ki duniya बना कर यूं मिटा दोगे ज़माना क्या कहेगा.
When you talk about lyrics and you talk about style, Ravi, you will listen to him talk about this aspect of his style indeed in a clip that will come up in a short while. But he was a man who believed in being handed the lyrics first so he could fit a tune or compose a tune to the lyrics. And he believed that was really the only way to go because it brought out the best in the lyricist. And there's a whole host of people that he's worked with, and Sahir Ludhianvi and Ravi's songs were popular. Chalo Ek Baat, for example, that he said was a proper, you know, poem written by, or piece of work written by Sahir in a book, and he just took that as is and, you know, composed a melody to it, and it turned out, obviously, as we all know, fabulously well. Let's listen to a small snatch of Chalo Ek Baat.
Wo afsana jise anjaam tak lana na ho mumkin usse ek khoobsurat mod dekar chhodna acha.
Chalo ek baar phir se.
One of the breakout songs of Mahendra Kapoor's career. And clearly, you can tell that the poetry was understood and internalized, and then a tune came around the poetry, which I think had something to do with the fact that he also began his early musical inclinations by writing a book of bhajans in 1943. There was a bhajan ka kitab that he wrote, which was also published. It's obviously now, I suppose, lost to the wisps of time. But here was a man who valued words and created tunes around those words. Of course, he went on to work with other great lyricists like Shakil Badayuni, Asad Bhopali, Majru Sultanpuri. The one common thread that you saw with all of these was the incredible use of poetry, the way a particular tune sits and fits the mood of those words is very evident in the kind of music that Ravi gave. And Ravi was also a man who was not heavy on instrumentation. He himself has said it in many interviews. His instrumentation was always light, was always Indian. There were only a few instruments. And this is the kind of feature that you see in most of his super hit songs as well. It was not like a 100-piece orchestra of the kind that you would hear, let's say, in a Shankar Jaikishan album or a Lakshmikant Pyarelal song, or indeed famously at one point Naushad as well.
जब आप किसी राइटर को किसी फिल्म के लिए एंगेज करते हैं तो उसको अगर आपने किसी बंदिश में बांध दिया तो उसकी लिमिटेशन हो जाती हैं. वो बेचारा उसी कंपाउंड में घूमता रहेगा और जो वर्ड अच्छे आते होंगे वो उसके वो नहीं ला सकता. क्यों? कि उसको बंदिश है, इन्हीं इसी ट्यून पर लिखना है उसको. शायरों को, जितने कवि थे, जो भी लिखने वाले थे, उनको मैं आजाद छोड़ता था कि आप सिचुएशन पर अच्छा गाना लिख कर लाइए, मैं उसी धुन बनाऊंगा. उनको इंडिपेंडेंस देने के लिए भी था, और ये मुझे लगता था कि मुझे एडवांटेज उसका ये मिलता था कि गाने राइटर अपने टैलेंट के हिसाब से बहुत अच्छे गाने लिख कर आते थे, क्योंकि वो उनको बंदिश नहीं थी.
हाँ, कोई लिमिटेशंस नहीं,
बंदिश नहीं थी कि मैं हमको उनको इसी धुन में लिखना है, या तो वो फिर अच्छा अच्छे से अच्छे पोएट्री लाते थे. और इसीलिए आप देखेंगे साहिर साहब ने जितने गाने लिखे वो लिख कर लाते थे, मैं धुन बनाता था. शकील साहब ने जितने गाने लिखे, अब जो भी असद भोपाली या मजरूह सुल्तानपुरी जो भी लिखते थे गाने, सब लिख कर लाते थे, मैं उसकी धुन बनाता था. स्टाइल बन गया और फिर मुझे शौक था काम करने का, तो मैं एक गाने की एक धुन नहीं, एक दो तीन चार पाँच छह दस बीस जितनी मैं बना सकता था मैं बना लेता था. और उसके बाद में मैं सेलेक्ट करता था इसमें कौन सी मुझे अच्छी लगती है सबसे.
अच्छा, तो ये बाकी धुनें आपने क्या क्या
मेरे पास हैं स्टॉक में? अभी तक स्टॉक में पड़ी.
जैसे कोई एक गाने का दो धुन जो आपने बनाया था वो बताइए.
मैं बताऊँ, देखिए आपको, मैं अभी एक गाना था, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी. अभी ये गाना था नजराना फिल्म में, रफी साहब ने गाया था. इसकी मैंने काफी धुन बनाई. बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी, बाजी किसी ने प्यार की, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी, जैसे गुजर सकी ये शबे गम गुजार दी. ऐसी इस तरह से, मतलब बहुत सारी धुनें थी और उसमें एक धुन ये थी जो जो वहाँ फिल्म में रही, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी, ये हमको सबसे अच्छी लगी इन बोनों के हिसाब से, इन वर्ड्स के हिसाब से।
अच्छा।
हमने ये रख ली, लेकिन बाकी दोनों मेरे पास नहीं। तो गहरा दाग फिल्म में एक शकील साहब पोएट्री लिख कर लाए, भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा। तो मैंने देखा कि ये मीटर जो है ये बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी से मिलता है। तो मैंने उसको देखा कि उसकी मैंने क्या क्या धुन बनाई थी। उसमें एक धुन थी बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी। तो मैंने ये सुन धुन इसमें देखा कि ये इसमें सूट करती है। भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, तो ये मैंने यहाँ गहरा दाग में धुन दी। तो इस तरह मतलब हम लोग देखते रहते थे कि कहीं अगर कोई हमारे पास ऐसी अच्छी धुन है और उसमें ये बोल फिट हो सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इस धुन पर लिखिए, कभी नहीं कहा। उनको लिख के लाते थे, उसको हम देखते थे कौन सी कहाँ फिट हो सकती।
The other thing is loyalties, right? Ravi tended to work with groups of people. Now, some of those might have not really been of his choosing, because when we asked him about his association with Mahendra Kapoor and Asha Bhosle, there was a way he decided to approach that particular question. And you will listen to what he said about both these singers and why they appeared frequently in his songs.
So, we were looking at this song, who will do justice in this song? Okay. मतलब पड़ा भारी है इसमें।
हाँ।
तो हम लता जी को बुला लेते थे। कभी ऐसा होता था कि लता जी अवेलेबल नहीं है, फिर आप मजबूरी से फिर तो किसी को बुलाते। तो हम देखते थे उसमें, फिर आशा जी सबसे अच्छी। क्या हुआ कि जब इन्होंने मेरी पहली फिल्म थी ना, तो पहली फिल्म में ही मेरे गाने सब गाने गाए थे इन्होंने। चंदा मामा दूर के जब लिया हाथ में हाथ, तो एक तो पहली फिल्म की वजह से भी उनके साथ एक अटैचमेंट रहा। और फिर उसके बाद में ये कई दफा ऐसा होता था कि लता जी अवेलेबल नहीं है, तो आशा जी से गाओ, तो आशा जी भी आ चुके हैं। कुली गुड बहुत अच्छी गाती हैं, और कुछ गाने तो ऐसे हैं कि बहुत ही बढ़िया गाए इन्होंने। जैसे मैं मिसाल दूंगा इसके फिल्म पूरा पत्र देखिए, हम देखते थे कि ये कौन इनका टाइप क्या कैसा है, तो शीशे से पी या पैमाने से पी। एक गाना देखिए इतना अच्छा गाया उन्होंने, ये रास्ते में प्यार के टाइटल सॉन्ग के अलावा उसमें एक और गाना था, आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती जाने चली कहाँ। आशा जी ने गाया था, बहुत बढ़िया। और वो देखिए वक्त का गाना आगे भी जाने ने, तू कितना सुपर हिट गाना। आगे भी जाने न तू, सुपर हिट गाना था। दो बदन में भी जब चली ठंडी हवा, मत जाइए नौकरिया छोड़ के, दो गाने थे आशा जी के। और एक गाना गृहस्थी में इनको क्लासिकल दिया था, जीवन ज्योति जले, जीवन ज्योति जले,
जीवन ज्योति जले, जीवन ज्योति जले।
ये गृहस्थी में था,
काजल में उनको तो रामन दर्पण दिया,
तो रामन दर्पण कहला,
भले बुरे सारे
सब फिल्मों में मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने गाया बहुत ही अच्छा गाया, बहुत अच्छा
गाया। धरती का प्यार पले,
ये क्या था कि एक तो बीआर फिल्म में उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे शुरू से। और रफी साहब नहीं गाते, सबसे बड़ी बात ये थी कि रफी साहब नहीं गाते थे। रफी साहब ने एक दिन, मैंने जब पहली फिल्म बीआर फिल्म की साइन की और गाना बनाया चलो एक बार फिर से, तो चोपड़ा साहब पूछने लगे किससे गवाएंगे। मैंने कहा रफी साहब, मोहम्मद रफी। बोले वो गाएंगे नहीं हमारे यहाँ। मैंने क्यों? बोले कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए वो हमारे यहाँ नहीं गाएंगे। मैंने रफी साहब से बात की तो उन्होंने कुछ बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं गाते हैं कोई बात नहीं। मैं फिर मैंने कहा ठीक है महेंद्र कपूर को बोलना मेरे साथ रिहर्सल करेगा आके। तो 10-15 दिन आता रहा, रिहर्सल करता रहा और गाना हमने गवाया और कम से कम 22-24 दफा गवाया। तो उसके बाद ओके हुआ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो वो करते करते मतलब फिर उसके बाद में सब गाने महेंद्र कपूर को मिलते गए वहाँ बी आर फिल्म में। और फिल्म आई वक्त, वक्त में एक आया टाइटल सॉन्ग जो मैंने कहा, मैंने कहा चोपड़ा साहब ये तो मैं रफी साहब से ही गवाऊंगा, बाकी कोई नहीं गाएगा। तो बोले वो देख लो आप अगर ला सकते तो ले आए, मैं तो हमें कोई एतराज नहीं। मैं रफी साहब को राजी करके लाया और फिर उन्होंने वो गाना गाया, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के हर शय बिराज।
वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज।
ये गाना गाया तो वो बी आर फिल्म का जरा सा इनके साथ अटैचमेंट था, इसी फिर बी आर फिल्म के। और वो एक्चुअली देखा जाए तो सारे सारे लोग बोलने के जो जो आपके ही गाने हैं महेंद्र कपूर की लाइफ में, बाकी तो और किसी के ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब कहीं महेंद्र कपूर नाइट होती है तो सारे गाने मेरे ही होते हैं, नीले गगन के तले या किसी पत्थर की मूरत से, या चलो एक बार फिर से अपने, चलो एक बार फिर से, या फिर आप आए तो ख्याल दे लेना शादा है तुम अगर साथ देने का वादा, जो भी गाने आए थे वो बीते हुए लम्हों के जो भी गाने हैं वो सब गाने मेरे ही गाते।
Sometimes a voice is enough to let us time travel. Flashback with Sheetal Iyer.
So Asha and Mahendra Kapoor benefited greatly, and from the outside we would have thought that this was a question of loyalty with these specific singers, but that's clearly not the case, as we heard in his own words. But loyalty was very much a theme of his professional life, starting with of course Hemant Kumar. And he also got his break by Devendra Goyal, who was a film director and producer. This was in the 50s, in 1955, when the first film that featured Ravi as an independent music director, that is Vachan, was the work of Devendra Goyal. He said, you know what, I'm going to give you a chance. And it didn't end there. He went on to make so many more films with him, right?
Narsi Bhagat, there was Pyar Ka Sagar, Dur Ki Awaaz,
Ek Saal,
Das Lakh, Ek Phool Do Maali, Ek Nehal Ho Sapno Ka, and more.
All of these, so many of these films with Devendra Goyal as either producer or director had music by Ravi. And this kind of loyalty, I suppose, is what holds you in good stead for if you want to work decades in the film industry, right?
Right, absolutely. And B.R. Chopra is the other person, right? And I think one other feature, because B.R. Chopra's films were of a certain kind, I don't know why he gravitated towards, because B.R. Chopra back in the day could have had his pick. You know what I mean?
But
he went very frequently to Ravi, and Ravi did wonders with all of those movies.
That's true. And Ravi, who clearly, as he has claimed in another audio clip that you listened to, Rafi was his favorite singer. But B.R. Chopra would not work with Rafi. So which is why that weird combination of this, almost like a Mexican standoff. Rafi would not work with B.R. Chopra. B.R. Chopra would only work with Ravi. And Ravi had to use Mahendra Kapoor. This weird triangle was going on. It was in one of his own interviews where the issue was broached as to why Rafi would not sing for B.R. Chopra. Should we discuss that, Sheetal?
Yeah.
Well, apparently there was a recording that B.R. Chopra's film had, and that film featured a duet with Mahendra Kapoor and Mohammad Rafi. Now, Rafi did not know that Mahendra Kapoor would be a co-singer on this particular song. And Rafi called the Chopra office up and said, well, who's going to be there for the recording? And they said, Mahendra Kapoor. And he said, no, I don't really want to sing with Mahendra Kapoor because, you know, our sound qualities are somewhat similar and we have a Guru-Shish relationship, and I don't want to leave room for unnecessary comparisons between the two of us, especially if we feature on the same song. But Mahendra Kapoor had already arrived at the studio and he was already there. And Rafi just refused to come. And from then on, this apparently left a bad taste in B.R. Chopra's mouth, and he decided never to work with B.R. Chopra ever again.
And of course, there was one exception that was made. Mohammad Rafi sang the title song of the film Vakt. And with B.R. Chopra, again, Ravi had quite a few monster hits. Vakt, certainly, there was Gumrah, there was Hamraaz, there was Dhund. I can't call that movie a hit, but certainly the soundtrack had some beautiful melodies, including Sansaar Ki Har Shay, that was, was solo. But Vakt, we've forgotten about one aspect, Rakesh.
That's true.
One significant thing that Ravi had going for him.
Which is, just like we spoke about the fact that there were children's songs and there were also, well, songs for seeking alms, as you said so politely. And there is the Shadi song aspect of it. Let's listen to a whole host of Shadi songs composed by Ravi, and we'll play the other song, which I suppose in a lot of ways is the crown jewel of that list.
Mera yaar bana hai dula aur phool khile hai dil ke meri bhi shaadi ho jaye dua karo sab milke
mera yaar bana hai dula aur phool khile hai dil ke har meri bhi shaadi ho jaye dua karo sab milke
aaj mere yaar ki shaadi hai yaar ki shaadi hai mere dildar ki shaadi hai
ओ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के
बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले
ऐ मेरे जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान
Mary Zohra Jabi is the crown jewel of the entire wedding set that people heard.
Well, it's because A, it has Balraj Sahni in it, and he was excellent in Vakht. We should also talk about the fact that he is also the voice of Babul Ki Duaye Leti Ja, which is part of that Shadi montage. And apparently, one side story here, Rafi, when recording this song, got so emotional while singing this song because his own daughter had only been engaged a few days prior, and all of those emotions came rushing back to him. Now, the same Balraj Sahni was also in Ae Meri Zohra Jabi. And the reason why I say it's not a typical Shadi song, obviously, because, you know, it doesn't have anything to do with the bride or the groom or whatever. But Shadis are, as I have discovered, not just about the people getting married. It's about the people who are in the wedding, i.e. the parents and the relatives and whatnot. And this particular song, probably because also of Amrish Puri singing this song in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge in 1995, has sort of become imprinted in people's understandings of what a Shadi song should be. It's also about the parents and they should also shine. So in a Sangeet, there is very rarely a Sangeet these days when one of the sets of parents doesn't come on stage and does a dance for Ae Meri Zohra Jabi.
Absolutely. And then even the lyrics of that song went on to become so famous that they were repurposed in a film. The lyrics alone, Phir Hera Pheri, let's listen to a bit of this completely. I don't think Ravi would have approved himself us playing this song
on
the shows, but you know, here we go.
Ae Meri, Meri Zohra Jabi.
All right, so now that we remember Ae Meri Zohra Jabi for the reasons it should be remembered and the reason it should not, the last one, let's talk about Ravi's approach. You know, there were different parts where he would speak of having a tune in mind for a particular song and then figuring the lyrics somehow did not, you know, work or it didn't do justice to the lyrics that were written because his approach, as we had demonstrated earlier, was to get hold of the lyrics first. Mm-hmm. And there's a song set that's coming up right now, right?
सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया
दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या
सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया
So you see what he did, Sab Kuch Luta Ke Talat Mehmood song and Dil Mein Kisi Ke Pyar Ka. These two songs were essentially, you know, swapped. The tunes were swapped for the song. So that's one example. And loyalty, you know, that's another motive. I want to dwell on that a little bit because remember that bit, Rakesh, where he spoke about his relationship with Salma Agha? Oh, that's the connection.
Yeah, that's another connection. That's true.
But yeah.
I honestly did not quite understand this bit, I have to say. When, of course, let's also talk about the fact that he stopped composing for Hindi films for a while and went away from the industry because he was disillusioned by the business itself. Perhaps the old loyalties that he had held on to were no longer working or the people had passed on. I do not know the story behind it, but he eventually came back later to give music for a spate of films in the 80s. And one of the biggest films he did during that time was Nikah. and Nika had Salma Agha. And for whatever reason, our man did not have the best time working with her.
एक दिन मैं बीआर फिल्म में ऑफिस में मुझे बुलाया तो मुझे बीआर चोपड़ा साहब कहने लगे भाई आपको इंट्रोड्यूस कराएं हमारी नई हीरोइन से निकाह फिल्म जो आपके जिसका म्यूजिक बना रहे हैं ये हमारी हीरोइन है सलमा आगा. एक दिन ऐसी बातों मुझे कहने लगे जब गाना बन रहा था तो चोपड़ा साहब कहने लगे वो गाना गाना चाहती है हमारी हीरोइन उसको सुन लेना जरा. मैंने कहा ठीक है. गाना पहला गाना मैंने बनाया दिल के अरमां आंसू में बह गए तो मैंने इसकी कोई 16 ट्यून बनाई.
16 ट्यून
एक ही वर्ड एक ही लिरिक की और आपको एक दो मैं सुना देता हूँ जो मुझे याद है.
हाँ जी.
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हम वफा करके भी तनहा रह गए. और भी कई धुनें बनाई. डेली सिटिंग होती थी.
हाँ.
चोपड़ा साहब उनके राइटर उनके असिस्टेंट जो भी सारे आकर और उनको मैं सुनाता था भी देखिए मैंने 16 बनाई है. तो कहते थे अच्छा ऐसा करते हैं 16 में से 8 फाइनल करते हैं. उसके बाद बोले अच्छा 8 में से हम 4 रखते हैं. तो 4 रखी. 4 में से 2 में से उसके कहते भाई इन दोनों में से कौन सी अच्छी है. तो जो फाइनल की ट्यून
हाँ.
वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि उसका क्या हुआ फिर. दिल के अरमांसों में बह गए हम वफा करके तनहा रह गए. ये ट्यून फाइनल हुई. तो मैंने उसको रिहर्सल कराई. रिहर्सल कराने के बाद जब मैं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं अपने ऊपर बात नहीं रखता. सबको मैंने बुलाया. मैंने कहा आप ये मैंने रिकॉर्ड किया है उसकी आवाज आप देख लो उसको क्या करना है. सबने सुना और सबने एक आवाज में कहा नहीं नहीं आशा जी को बुलाइए. कहा ये तो ठीक नहीं है इसकी आवाज. क्यों क्या लगा. बोले ये जब कहती है ना दिल के बह गए उसकी नाक में आवाज थी थोड़ी.
हाँ.
तो मैंने कहा फिर क्या करें. बोले आशा जी को बुलाइए.
हाँ.
अब ये आशा जी की बात जब चली तो उसको पता लगा कि इसको तो मेरा गाना ये आशा जी गा रही है.
हाँ.
तो जाके बीआर साहब बीआर चोपड़ा साहब के पास जाके रोई. मैं तो काम कर मैं गाने के लिए आई थी और मैं तो काम नहीं करूंगी फिल्म में अगर मुझे गाना मेरा कोई दूसरा गाएगा. और मैं फिर चोपड़ा साहब भी परेशान हुए. बोले मैंने मेरे पास आए कहने लगे भाई मैंने 3 महीने तो रिहर्सल कराई है डायलॉग्स की और नई लड़की है उसको मैंने सारा ज्वेलरी व्वेलरी सब रेडी कर ली है और हैदराबाद में शूटिंग फिक्स कर ली है. अभी अगर ये नहीं काम करेगी तो मैं फिर नए सिरे से कोई लड़की देखनी पड़ेगी क्या करूँ उसकी. अगर आपको गवाना ही है इससे तो मैं इसकी धुन बदल देता हूँ. मैं ऐसी सिंपल धुन बनाऊँ जो ये ठीक गा सके. दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हम वफा करके भी तन्हा रह गए. ये 17वीं ट्यून थी. अब ये ट्यून उसको सूट कर गई और गाना सुपर हिट हो गया. क्या है जब गाने इसके हिट हो गए निकाह के.
हाँ.
तो उसका दिमाग खराब हो गया. और दिमाग खराब ऐसा हुआ कि मेरे पास एक दिन पेपर वाले एक आए इंटरव्यू के लिए. कहने लगे जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं. कर लीजिए.
हाँ.
इंटरव्यू मैंने किया. सलमा आगा का भी हमने इंटरव्यू किया था तो वो कुछ कह रही थी कि हमने उसको पूछा कि आपके गाने तो बड़े चले आप इसमें फिल्म में निकाह में और आपको अवार्ड कितने मिले हैं.
हाँ.
तो वो हमको कहने मुझे कहने बोले हमको बताती है वो कह रहे हैं कि गाने इसलिए चले कि मैंने गाए थे.
ओ.
तो मैंने दिल में सोचा भाई इसका मतलब धुन कुछ नहीं है म्यूजिक कुछ नहीं है कि उसकी आवाज़ पर गाने चले. तो मैंने कहा ठीक है और भी गाओ तुम. बाद में मुझे कई फिल्मों में लोग कहने लगे सलमा आगा से गाना लेने. मगर नहीं मैंने एक गाना नहीं दिया उसको.
It was quite a long story, but it was interesting because it not just told you about his relationship with Salma Agha and how that really soured, but it also gave you an idea of how he approached his compositions. Multiple 17 odd tunes for one song. And some of those actually sound familiar. If you just go back and listen to some of the other 80s movies that he composed for or some of the Malayalam films that he composed for, you might find one of these tunes in.
That is true. That is true.
And yeah, let's also listen to what he had to eventually say about, Salma Agha. This is a lighter moment, I think, but the man clearly had a wicked sense of humor.
जब इसके गाने कहीं नहीं चले, बहुत जंगल को पता नहीं क्या क्या पिक्चरों में इसने काम किया, जब गाने नहीं चले, तो एक साहब ने कहा भाई इसके ऊपर पैरोडी बना सकते हैं. तो बोले मैंने कहा क्या क्या करें. बोले बड़ी इसको बनाओ ना इसके गाने के ऊपर पैरोडी. आप तो लिखते हो. मैंने कहा ठीक है. हम जहाँ थे बस वहीं पर रह गए दिल के अरमां आंसुओं में बह गए.
And as far as never wanting to work with Salma Agha ever again, there was also another person he swore off, and that was Suman Kalyanpur. Listen to what that situation was all about.
Suman Kalyanpur. समझिए कि लोग कई दफा ये बोलते थे कि ये लता है या सुमन है. मैंने उसको गाने बिगनिंग में दिए. एक गाना ऐसा आया कि हमारे गोयल साहब 3-4 दिन के बाद बाहर जाना है, तो आज ही रिकॉर्डिंग करते हैं. मैंने कहा ठीक है. रात को रिकॉर्डिंग रखी और रफी साहब को बोला, मैंने कहा रफी साहब आप घर में रहिएगा, मैं तैयार होकर आपको फोन करूंगा. और लता को हम लेने वाले थे गाने के लिए डुएट. अब इत्तेफाक की बात है कि लता जी घर में नहीं थी. अब हमने कहा चलो, गोयल साहब ने कहा फिर आशा को ट्राई कर लो. आशा को ट्राई किया, आशा भी नहीं थी. हमने कहा चलो सुमन को ट्राई करते हैं. सुमन को बोला तो बोले मेरे घर में मेहमान हैं, आने वाले हैं खाना खाने के लिए, 10:30-11 बजे आओ, हम तैयार करेंगे. हमको भी 2 घंटे लगेंगे कम से कम तैयार करने में, तो हम तैयार करके आपको बोल देंगे. बोली ठीक है. तैयार होने के बाद में फोन किया सुमन को, मैंने कहा आ जाओ, मेरे मेहमान तो गए नहीं अभी और वो देर में जाएंगे, पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, आज तो नहीं आ सकूंगी मैं. इधर रफी साहब वेट कर रहे थे अपने घर में. फिर रफी साहब को फोन किया, वो सुमन का फोन आया था, वो रफी साहब कहते हैं. तो मुझे कहने लगे आप कितने बजे जा रहे हैं रफी साहब की रिकॉर्डिंग में. तो मैंने कहा तुम कहाँ से आ गए, वहां तो लता गा रही है. और रफी साहब को नहीं मालूम था कि लता नहीं मिल रही. तो बोले अच्छा लता गा रही थी. टेलीफोन बंद कर दिया. हमने म्यूजिक ट्रैक लिया और 3 दिन के बाद गाना रिकॉर्ड किया. और मैं आपको ये बात आपको बता दूं, मेरे ख्याल में 35 साल हो गए होंगे मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी सुमन कल्याणपुर. जो गाना रिकॉर्ड करने वाली थी वो रफी साहब के साथ गाना सुपर डुपर हिट हुआ. मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले,
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले.
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले.
ये बात गलत है. लता जी की अगर नहीं मिलती हैं, आशा को ट्राई की, आशा नहीं मिली तो हमने तुमको लिया है. तुम तो खुश होना चाहिए तुमको कि जो गाना लता गा रही थी वो तुम गा रही हो.
हाँ,
ये ऐसी ऐसी चीजें यहाँ इंडस्ट्री में होती हैं. भगवान बिल्कुल अच्छी मतलब वेल ऑफ हैं वो, अपने काफी पैसा है, काफी खुश है, सब कुछ है. लेकिन एक जो इनका एक करियर था वो एज ए सिंगर
वहीं का वहीं रुक गया.
Suman Kalyanpur was clearly not on his favorites list, but there were others who were on his favorite list, and some of the songs they sang also featured prominently on those songs that he valued most of all. Listen to what he had to say about those.
मुझे सैड गाने बड़े पसंद, बनाना पसंद करता हूँ और गाना पसंद करता हूँ. इसीलिए आप देखेंगे कि मेरे जितने गाने हैं जो इमोशनल गाने हैं वो आज तक चलते हैं और आज तक लोग ले जा करते हैं. चाहे वो इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हो, मिली खाक में मोहब्बत हो, या रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा. जैसा मैंने आपको बताया, मैंने अपनी क्षमा बुझाकर तेरी क्षमा जला दी है.
मैंने अपनी क्षमा बुझाकर तेरी क्षमा जला दी है, खून हुआ है अरमानों का फिर भी तुझे दुआ दी है.
और गैरों पे करम अपनों पे सितम, कितना अच्छा गाया उन्होंने.
गैरों पे करम अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर.
एक गाना था घटना फिल्म में मैंने लिखा था. फिल्म तो नहीं चली वो, लेकिन गाना बड़ा लोगों को. अभी मैं लंदन में मैं जाता हूँ कभी, तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो गाना हमको बड़ा पसंद है. हजार बातें कहे जमाना मेरी वफा पर यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना मेरी वफा पे यकीन रखना.
हजार बातें कहे जमाना मेरी वफा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना.
So to that list of favorite singers, he would have added two more names, because those two singers went on to earn great many awards and recognition for the songs that he composed. From the South, where he was called Bombay Revi, Ravi had an almost great second career towards the end of the 80s and 90s. He composed music for 16 or 17 Malayalam films and went on to be greatly recognized for it. He won the Kerala State Film Award for Best Music Director in 86 and 92 for films Nakakshatangal and Sargam, and also for background music for the 1993 film Ghazal. He also won the Filmfare Award for Best Music Director in Malayalam, Parinayam. And of course, he had already won the Hindi Award for two of his albums, Gharana, which had...
Husn wale tera jawab nahi, koi tujhsa nahi hazaaron mein.
And of course, Khandar, which had that other famous song, which won Lata her Filmfare Award.
Tumhi mere mandir, tumhi mere pooja, tumhi devta ho, tumhi devta ho.
And he won the National Film Award, this time not for Hindi films, but for Malayalam. Parinayam and Sukrutam were the two films that he won the National Award for combined together in 1995. So he didn't understand the words that were being given to him, but he somehow understood the situation and still went on to give some incredibly memorable music for these films, a few snatches of which you will listen to here.
Sagarangale paadi unathiya samageetame sama sangeetame hrudaya sagarangale paadi paadi unathiya samageetame sama sangeetame.
And those two last songs that you heard by Chitra went on to win her two national awards.
Yep, and it's time to listen to how that really happened to his career, right? How Malayalam came into his world, all because of a fan, someone who approached him while he was in Bombay and said, "Sir, big fan of yours, why don't you come to God's own country and compose some music for us?" And of course, not that simple. This is how it really panned out.
मैं actually मुझे क्योंकि जब से ये hotspot music यहाँ आने लगा, तो मैंने कहा अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने एक साहब आए मेरे पास, उसकी भी एक हिस्ट्री मैं बताना चाहूंगा. एक टॉप राइटर वहाँ के डायरेक्टर मेरे पास आए यहाँ बॉम्बे, आके कहने लगे आप आपके बड़े फैन हैं तो मलयालम में म्यूजिक क्यों नहीं देते. तो मैंने कहा भाई मुझे लैंग्वेज नहीं आती. बोले नहीं दैट वी विल लुक आफ्टर आप, हाँ करिए. तो मैंने दो गुजराती फिल्में की थी, तो गुजराती फिल्में की तो मुझे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया. तो मुझे दिल में लगा चलो मैं मलयालम में अच्छा ओके मैं करूंगा. उन्होंने जनाब सीट बुक कर दी, वहाँ मद्रास बुला लिया, आज कोरोमंडल में ठहरा दिया, काम शुरू करें. और ये राइटर हैं हमारे, गिव मी द वर्ड्स. राइटर मुझे कहते सर गिव मी द ट्यून. मैंने कहा मैं तो कभी ट्यून दी नहीं किसी राइटर को. तो मुझे कहने लगा, मैंने कहा आप गिव मी द वर्ड्स. बोले यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट. मैंने कहा लेट मी ट्राई. वो बड़ा हंसने लगा कि आपको परेशानी होगी, मतलब उसका मतलब था. मैंने कहा मैं लिख लेता हूँ, आप मुझे वर्ड दीजिए, मैं उसकी धुन बनाऊंगा. जब वो लिखवा रहे थे तो मुझे पसीना आ रहा था, क्योंकि ये टेढ़े वर्ड संस्कृत में वर्ड थे. मन्यल प्रसाद निटील चारती मन्य कुरी मुंडू चुट्टी. अब मैंने कहा क्या करूँ इसको, मैं कैसे बनाऊंगा, ट्यून कैसे बनेगी. खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उनको दूसरे दिन बुलाया और राइटर डायरेक्टर सबको बुलाकर मैंने दो चार रात को बैठकर मैंने काफी उसकी जैसे मुझे आदत है निकाह की मैंने 16 बनाई, इसकी भी मैंने 10-15 ट्यून बनाकर खुद अपने खुद ही रिजेक्ट करके ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है करके एक ट्यून पे मैं जरा अटक गया. मैंने कहा ये कुछ ठीक लग रही है, अगर उनको ठीक लगे तो. राइटर अपने डायरेक्टर को मैंने सुनाई तो उछल कर कहने सर वेरी गुड सर. जब उन्होंने सर वेरी गुड कहा तो जब उन्होंने कहा बहुत अच्छी है तो मैंने कहा ठीक है. और गाने के फिर अंतर अंतर बनाए गए, गाने वाली थी नई नई आई थी चित्रा, गाना सुबह पर हिट हुआ.
मंजल प्रसाद मिट्टी चाटी मन कुरी
छुट्टी। दो फिल्म की मैंने, दोनों फिल्मों को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। मुझे बड़ा हौसला हो गया। बताना चाह रहा हूँ कि 16 फिल्म मैंने की है, जिसमें से कम 10-11 फिल्में सुपरहिट हैं। कि वो मैं मुझे उनके ट्रेडिशनल कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं।
हाँ।
मतलब जैसे वो उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं खास, इससे लगे मालूम होता है कि ये केरला का म्यूजिक है। तो वो मैं रखता हूँ साथ में।
हाँ।
और मुझे ऐसा फीलिंग है कि मेरे क्योंकि राइटर मलयालम।
हाँ।
और मैं नॉर्थ का।
हाँ।
और वो म्यूजिक मैं बनाता हूँ केरला टाइप का।
हाँ।
तो वो सारा मिक्सअप होके कुछ नई चीज निकल आती।
अच्छा।
ऐसा मेरा फीलिंग है।
हाँ।
अब मैं आपको मिसाल दूँ। सागर अंगड़े पाड़ी उनर्ती है, साम गीत में साम संगीत में हृदय।
सागर अंगड़े पाड़ी उनर्ती है, साम गीत में साम संगीत में हृदय।
सागर अंगड़े।
You know, I think you've heard Ravi's voice. He's hummed a few of his famous songs. We know what those massive hits are all about. But I think each one of us likes a particular song for a particular reason. For me, if I say what is Ravi's best composition, I wouldn't really say Chalo Ek Baar, because I did say some time back that was my favorite song. But that actually is my favorite Sahir piece of writing.
Hmm.
It's difficult to separate sometimes a music director from the poetry that has accompanied his tune.
It's the same with Sahir and Khayyam, for example. Whose composition is it more? Kabhi Kabhi. Is it Khayyam's or is it Sahir's? It's hard to tell.
Very hard to tell. Yeah, absolutely. But that brings me to this question, Rakesh. What is your favorite Ravi song?
I can say album. I mean, unfortunately, I can't quite agree with Filmfare and say Gharana and Khandan are among my favorite albums of his. But I do think Chaudhvi Ka Chand as an album really does stand out for me. And I think it's Rafi who does it for me. Considering I'm a lifelong Lata fan, it's a bit ironic because she only had one song, Badle Badle Mere Sarkar, which is, quite average. But all the Rafi songs are, as far as I'm concerned, some of the greatest songs that he's ever sung, including Mili Khaak Mein Mohabbat. Chaudhvi Ka Chand, the title track, gets all the attention, and duly so. Why not? It is a spectacular composition. But I have a soft spot for Mili Khaak Mein Mohabbat.
Mili Khaak Mein Mohabbat Jala Dil Ka Aashiyana La Ra 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 La Ra La Ra 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 La Ra Da-da.
Mm. Mine, I think, would be the Tower House song. Somehow, I really like that one. Ae Mere Dile Na Da.
Ae Mere Dile Na Da, Tu Gham Se Na Ghabrana.
Ae Mere Dile Na Da, Tu Gham Se Na Ghabrana.
I genuinely like Sab Kuch Luta Ke, the Lata version. And Wo Dil Kahan Se Lau from Bharosa is also one of my favorite songs by him. And Dilli Ka Thug, dude.
T-A-T cat, cat mane billi, R-A-T rat, rat mane chuha, are dil hai tere panje mein to kya hua?
M-A-D mad, mad mane pagal, P-O-Y boy, boy, boy mane ladka, are matlab iska tumko ho to kya hua?
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
ये राते ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सो दैट्स अबाउट फेवरेट्स, बट व्हाट अबाउट द मोस्ट नोन रवि सॉन्ग दैट वी हैव? वुड इट बी चौधरी का चांद? आई डोंट नो,
I think so, but I do feel there may be a few other contenders to take that spot. Bar Bar Dekho, maybe?
Yeah, I would agree. I think the most famous Ravi song would be Bar Bar Dekho. It may not be his finest song, followed closely by Chaudhvi Ka Chand. That would be my list.
Yeah.
And third would be Ye Raatein Ye Mausam.
Why not C.A.T. Cat, Cat Mane Billi?
Then, you know, Chole Ne Do from Kajal, Jab Chali Thandi Hawa, Do Badan, Neele Gagan Ke Tale.
Oh, that's true. There's a lot of them. But I'm talking of, popularity that cuts across decades and age groups. Now, these sort of mellow songs that you mentioned may be favorites with a certain age group, but C.A.T. Cat, Cat Mane Billi, starts with the children and you carry them over as part of your nostalgia. So, popularity-wise, they may just trump the other, melodious ones.
I agree, but you know, I have a feeling if you were to put this out as a poll, Chaudhary Ka Chand would certainly be the song that people would think would be his most recognizable, most popular melody. So here's a part from the interview where he speaks about how the song really came to be.
पहले कितने प्यार से काम होता था, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और अपने सुनने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि एक सिचुएशन दी गई हमको जो टाइटल सॉन्ग था चांदनी का चांद हो या आफ्ताब हो जो भी हो तुम खुदा के किस्म लाजवाब हो सिचुएशन बताई गई ऑफिस में उनके गुरुदत्त जी के ऑफिस में मीटिंग रखी पूछने लगे गुरुदत्त राइटर कौन किसको ले मैंने कहा जी आप जो उर्दू वाले लेने पड़ेंगे पिक्चर है आपकी तो उर्दू का जो अच्छे राइटर हो बोले उर्दू राइटर में शकील कैसे रहेंगे मैंने कहा शकील बहुत अच्छे हैं लेकिन मैंने कहा वो नौशाद साहब को छोड़कर आएंगे हम कोशिश कर रहे हैं वो शायद आ जाएंगे एक दिन गुरुदत्त जी का फोन आया कि जो शकील साहब को बुला लिया हमने अब वो तैयार है फिल्म करने के लिए तुम आ जाओ मैं पहुंचा उधर तो वहाँ शकील साहब बैठे थे बोले मैं मुशायरे से आता हूँ और वहीदा रहमान मेरा इंतजार कर रही है अपना रात को और मैं वापस आके देखा कि वहीदा रहमान बड़ी सुंदर और इंतजार कर रही है मेरा तो मैं उनके लिए एक गजल गाता हूँ उनकी उसकी तारीफ में हो मैं एक दिन किसी रिकॉर्ड में दूसरे की रिकॉर्ड थी मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो म्यूजिक ऐसे ही मेरे ख्याल में आया कि वहाँ गजल क्या हो सकती है गजल तो मैंने उस जमाने में कोई फैशन चला था कि गाने का जो 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 पिक्चर का नाम होता है वो गाने में आता टाइटल सॉन्ग उसको बोलते
हाँ।
तो मैं आते आते मैं सिर्फ मेरे दिमाग में इतना आता था तो मैं गाता हुआ आ रहा हूँ चौदहवीं का चांद हो और फुल स्टॉप लग जाता मैं आगे क्या कहूँ तो मैं घर आकर शकील साहब को फोन किया मैंने शकील साहब एक मेरी बड़ी उलझन है आप सुलझाएं अगर आके तो बड़ा अच्छा हो तो वो आ गए तो अगर ऐसे शुरू करें चौदहवीं मतलब पिक्चर का नाम भी आ जाता है इसके अंदर चौदहवीं का चांद हो आगे क्या हो तो मुझे कहने लगे या आफ्ताब हो मैंने कहा या आफ्ताब हो मैंने कहा इसके आगे तो खुद ही कहने लगी अरे बाबा बोले जो भी हो तुम खुदा ला जवाब मैंने उसकी धुन बनाई खाना ऐसा बड़ा बढ़िया लगा हमको 5 मिनट में गाना बन गया
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो
We began with sort of a clean, on a clean slate, really, wondering what we put out there as Ravi's best. And clearly, we're fighting about what really
That's true.
There's plenty. Sometimes worry, honestly, is with the lesser sung music directors is that you might not really find a peg to define their stories by. But Ravi, I think a few things have stood out. He was a music director who was every lyricist songwriter's dream come true. Because
That's true.
Give me the lyrics, as he said to the Malayalam lyricist who came to visit him. But that's one. The other thing was, of course, the fact that he loved singing. I think that has something to do with how you approach your composition, right? And then again, there was this multiple, tunes. He was a tune churner. I don't know if there's a better phrase for this, but he was basically someone who was constantly composing tunes. Something occurred to him. You almost imagine him tapping it out there and writing down the notations for that thing. So it could be useful at any point. Above all, I think he was a easy sort of a human being to get along with, which is why I don't think he had too many. I mean, while he did take a stand in the cases of Salma Agha and
Sumar Kalyanpur,
but he somehow comes across as someone who is easy to work with and resourceful. For example, how about we sign out with that, right? That moment where they had this real big problem of Rajinder Krishnan not being able to come up with a piece to be sung by tribals in Zindagi Ke Dene Wale from Nagin.
While what might have been construed as resourceful back in the day is clearly not kosher in these days, but he came up with what was necessary at that age to be come up with.
Yeah.
वहाँ एक छोटी सी बात बता सकता हूँ कि वहाँ उसमें नागिन फिल्म में कुछ जंगल वाले भी गा रहे हैं
अच्छा
वो क्या गाएंगे ये राजेंद्र कृष्ण साहब बोले भाई मैं नहीं मुझे नहीं पता क्या गाएगी तुम जानो तुम्हारे मैंने कहा हेमंता को मैंने कहा हेमंता ये वर्ड मैं लिख लूंगा तो मैंने वो वर्ड लिखे और बड़े लोगों को बड़ा अच्छा लगा म्यूजिकल वर्ड हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पर जाजवाला हक्को माला हो या जाजवाला हक्को माला हो या ओ जिंदगी के देने वाले
जाजवाला हक्को माला हो या
But if we had to leave our audience with one particular song outside of all the many that we've already played, which one would it be?
How about this one then? A song that he got to sing on screen himself. You know, I'm quite certain that might have been something that he was waiting for. And the opportunity presented itself in the film Ek Phool Do Maali. Kismat ke khel. That's what we're going to leave you, a very philosophical note. But with that, yes, this is Sheetal and Rakesh saying thank you for joining us on Flashback, where we've hopefully successfully rediscovered Ravi.
किस्मत के खेल मेरा ले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन काले मेरे भैया, किस्मत के खेल मेरा ले मेरे भैया.
Tales from a time gone by, Flashback with Sheetal Iyer, only on The Podcaster.
वहाँ मैं अक्सर दवाई वगैरह लेने के लिए जाता था कभी. हाँ. तो वो दोस्त बन गया. वो मुझे कहता है आपका जो म्यूजिक है आजकल का, आज के फिल्मों का. हाँ. वो हमारे व्यापार से बहुत मिलता है. मैंने क्या मतलब, और हम जो सिरिंज बनाते हैं ना, वो फेंकने वाली सिरिंज के इंजेक्शन लगाया फेंका. हाँ, ऐसे ही आजकल का म्यूजिक है, कैसे सुना फेंक दिया.
डिस्पोजेबल
डिस्पोजेबल बोले वो एवरलास्टिंग नहीं है.